Hare Krishna, this class on Sunday love feast at ISKCON Dwarka, given on the topic Amrit Ki Do Dharaen Srimad Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, given on 23rd October 2016 by myself Prashant Mukund Das.
Radha Madhava Kunja Bihari. Boliye. Gopi Jana Vallabha Giri Vardhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanchari Yamuna Tira Jayorada Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare,
Shri Radhe Shyam.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radha Madhav Tri Radhe Radha Madhav Tri Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radha Madhav Tri Radhe Jaya Rukmani Dwarkadhisha Rukmini Dwarkadhisha Rukmini Dwarkadhisha Rukmini Dwarkadhisha Sabhi bolo Muko kholo Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Yashoda Damodara Yashoda Damodara Yashoda Damodara Jaya Yashoda Damodara Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol
श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। यशोदा दामोदर भगवान की जय। श्री श्री पंच तत्व गौर निताय की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही विशेष दिन, राधा कुंड प्रकट दिवस, बहुला अष्टमी, कार्तिक मास। तो आज हम स्पेशल कथा करने जा रहे हैं बहुत ही मुख्य विषय पर, अमृत की दो धाराएं, एक है श्रीमद् भगवद गीता और एक है श्रीमद् भागवतम। तो ज्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, भगवद गीता पढ़ते हैं कि भागवतम पढ़ते हैं, तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। पहले हम सभी मिलकर भगवान को मंगलाचरण करेंगे ताकि इस यज्ञ की पूर्णता प्राप्त हो। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाते शब्दकान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णापादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांचा कल्पतरुभश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के संडे लव फीस्ट कार्यक्रम में। तो आज का हमारा शीर्षक है दो अमृत धाराएं, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। तो ये जो भागवत शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग भगवत गीता और श्रीमद् भागवत इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं प्रभु जी, हम भागवतम पढ़ रहे हैं। और सच्चाई में वो लोग श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे होते हैं। तो ये कन्फ्यूजन है, तो इसको दूर करना है आज ध्यान पूर्वक। तो बहुत ही मुख्य चीज, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो भागवत शब्द तब उपयोगी है जब भागवत शब्द का अर्थ है जो भी चीज भगवान से जुड़ी हो, जो भी चीज भगवान से जुड़ी हो वो क्या बन जाती है, भागवत। अगर भक्त भगवान से जुड़ जाए तो क्या बनता है, भागवत। तो उसे कहते हैं ये भागवत भक्त है। अगर कोई गाना
फिल्मी गाना ना होकर एक गाना जो भगवान के गुणों के लिए गाया जाए, या फिर भगवान जिस गाने को गाएं तो वो क्या बन जाता है? भगवत गीता, है ना। एक गीत जो भगवान के द्वारा गाया जाए या जिसके द्वारा भगवान से जुड़ा जाए, वो गीत वो बन जाता है भागवत गीत, गीता। और दूसरा जो है श्रीमद् भागवतम, भागवतम पुराण भी बोलते हैं, भागवत पुराण। तो पुराण का अर्थ है प्राचीन, जिस ग्रंथ में भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाओं को प्रेम पूर्वक विस्तार रूप में प्रकट किया गया, और जो श्रवण मात्र से भगवान से जोड़ सके तो क्या बन जाती है? भागवत पुराण। तो ये निश्चय कर लीजिए जीवन में कि कोई भी चीज हो, अगर वो भगवान से जुड़ी है तो वो भागवत है। भागवत, भागवत शब्द का अर्थ है भगवान से जुड़ा हुआ। भक्त जुड़ा है तो भागवत भक्त, गीत जुड़ा है तो भगवत गीता, पुराण जुड़ा है तो भागवत पुराण। इसके अलावा जो कुछ भी है सब गड़बड़ है, यही है बस। क्योंकि जो भी हम पढ़े, जो भी हम सुने, उसका एकमेव कर्तव्य क्या है? ठाकुर जी से जोड़ दे, बस। और कुछ तो नहीं चाहते, मंदिर में इसलिए तो नहीं आते कि हम कुछ विशेष चीजें चाहते हैं, नहीं। हम मंदिर में आते हैं ताकि हम भगवान को समझ सकें, भगवान से जुड़ सकें। तो इसलिए अब भगवत गीता के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे कि भगवत गीता क्या है, और उसके बाद में श्रीमद् भागवत के बारे में चर्चा करेंगे। तो भक्त अगर ये पूरा कक्षा को श्रवण करें तो वो बड़ी सरलता से भगवत गीता और भागवतम के भेद को समझ पाएंगे। तो अभी हम श्रीमद् भगवत गीता को प्रारंभ करते हैं। जो भगवत गीता है इसको महाभारत, महाभारत, महाभारत जो ग्रंथ है जिसे स्वयं गणेश जी ने लिखा, किसने लिखा? लेकिन किसने कहा? वेद व्यास जी ने, बिल्कुल सही, वेद व्यास जी ने कहा और गणेश जी ने लिखा। इसमें कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक। कितने? 1,00,000। कुछ लोग बोलते हैं 70,000-80,000, लेकिन सही मायने में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक। अब इन 1,00,000 श्लोकों में महाभारत में भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700। और ये भगवत गीता कौन से ग्रंथ का हिस्सा है? महाभारत का। तो महाभारत में भगवत गीता है, तो लोग कहते हैं गीता में महाभारत है। नहीं, गीता से महाभारत है। मतलब ये कि जब आप अंगूठी बनाने जाते हैं, क्या सुन रहे हैं ना प्रभु जी, जब आप अंगूठी बनाने जाते हैं तो अंगूठी के लिए नग डलवाते हैं या नग के लिए अंगूठी डलवाते हैं? हाँ जी, किसके लिए? अंगूठी के लिए नग की नग के लिए अंगूठी? नग के लिए अंगूठी। कुछ लोग अंगूठी के लिए नग डलवाते हैं, नग के लिए अंगूठी। तो नग क्या है? महाभारत है अंगूठी, और उसका नग क्या है? श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। ये भगवत गीता जो है उन 700 श्लोकों में सिर्फ 45 मिनट में श्रीमा महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, किसने? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को कहा, अपने प्रिय सखा अर्जुन को कहा। तो ये और किसी को नहीं, ये हमारे लिए ही है। और कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, गीता जी तो उन लोगों के लिए है या तो वो शरीर छोड़कर चले गए हो, या फिर उनके लिए है जो अपनी वृद्ध अवस्था में मृत्यु का इंतजार कर रहे हो। एक व्यक्ति थे, वो सुबह उठ करके ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे 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 ऐसे, तो वो दूर थे, दूसरी छत पे रहा करते थे। तो हमें लगता था सुबह उठकर भजन करते हैं ऐसे नारद जी की तरह। हाँ, तो हमने जाकर एक दिन पूछा कि प्रभु जी बहुत अच्छा लगता है देखकर कि आप वृद्ध तो हैं लेकिन इतने उत्साही हैं कि सुबह सुबह उठकर के ही क्या करते हैं? भगवान के नामों का जप करते हैं, ऐसे ऐसे। तो बोले जप ये क्या होता है? मैं कहा आप सुबह उठकर क्या करते हैं? कहा मैं तो रोज सुबह उठ करके ये बोलता हूं, आज फिर बच गया, आज फिर बच गया। तो ये अवस्था नहीं है भगवद गीता पढ़ने की। अवस्था कौन सी है? जिस अवस्था में अर्जुन थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुना क्योंकि अर्जुन ग्रस्त व्यक्ति थे, उनकी पत्नी भी थी सुभद्रा। सुभद्रा महारानी देखते हैं ना आप, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अर्जुन की पत्नी है। तो सुभद्रा महारानी जो कृष्ण की बहन है वो अर्जुन की पत्नी है, ग्रस्त परिवार में है। तो आप सब ग्रस्त हैं कि नहीं है? वो अलग बात है, ग्रस्त से त्रस्त है, लेकिन है तो ग्रस्त ही। तो ग्रस्त व्यक्ति जो है उसके लिए भगवान ने कहा भगवत गीता, रिटायर्ड व्यक्ति के लिए नहीं, ग्रस्त व्यक्ति के लिए, ना ब्रह्मचारी ना सन्यासी, भगवान ने उसको चुना जो है ग्रस्त। और कौन सी परिस्थिति में है, जब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, यमुना का किनारा है, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, नहीं, कब, जब अर्जुन युद्ध के लिए तत्पर है और अपने परिवार के लोगों को मारने में विफल हो रहा है, कार्पण्य दोषम उपस्वभावा, मैं डर रहा हूं मेरा धनुष छूट रहा है, ऐसी अवस्था में उसने कहा क्या करूं, भगवान ने कहा डरो मत, सुनो अब क्या, भगवत गीता सुनो, मेरे से गीता सुनो, तब भगवान ने उनको गीता सुनाई। तो ये गीता 5000 साल पूर्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दी गई, तब भगवान ने कहा कि ये मैं गीता इसलिए सुना रहा हूं ताकि तुम्हें दोबारा से धर्म की स्थापना कर सकूं। आज से 4 करोड़ साल पहले, कितने 4 करोड़ साल पहले मैंने सूर्य के पुत्र विवस्वान को भी सुनाई थी, लेकिन क्रम में धीरे धीरे आते आते भूल गए लोग। तो आज की स्थिति ऐसी है कि लोग कोर्ट में हाथ रख के कसम तो खाते हैं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और जज साहब भी कहते हैं एक्सेप्टेड ग्रांटेड, लेकिन उसके अंदर जो लिखा है उसको सत्य नहीं मानते जी। तो उसके अगर हाथ रख के कोई क्रिमिनल सत्यवादी बन सकता है, तो उसके अंदर जो स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो क्या झूठ है? भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभित्तानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजामि अहम्। मैं बार बार आता हूं धर्म की स्थापना करने के लिए, कभी खुद आता हूं कभी अपने भक्तों को भेजता हूं। तो गीता जी के लिए भगवान स्वयं आ रहे हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, बाद में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मिनट में बोली गई, कौन से ग्रंथ का हिस्सा है, अभी तक आप लोग जग रहे हैं इसका मतलब। तो ये जो भगवत गीता है इसको 18 अध्यायों में बांटा गया है, 700 श्लोकों को 18 अध्यायों में बांटा गया है। प्रथम अध्याय जो है पहले से 6ठा अध्याय, ये 6 अध्याय निष्काम कर्म योग सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं जी? निष्काम कर्म योग। कर्म तो करो लेकिन निष्काम भावना से योग करो। अभी योगा डे में बड़े सारे लोग अपने शरीर को योगा कराएंगे और पार्कों में भी सुबह सुबह योगा होता है, लेकिन सही योग का मतलब है भगवान से जुड़ना। योग को अगर हिंदी व्याकरण में देखें, योग शब्द का मतलब है प्लस जुड़ना। तो जो कर्म भगवान से जुड़े वो कर्म योग, ये 6 अध्यायों में भगवान ने सिखाया। उसके बाद में इसी के अंदर ध्यान योग भी आता है, कर्म योग के पार्ट के अंदर ही 6ठे अध्याय में ध्यान योग सिखाया भगवान ने, लेकिन वो निष्काम कर्म योग का हिस्सा आ जाता है पहले से 6ठा अध्याय। 7वें से 12वें अध्याय तक भगवान ने क्या सिखाया? भक्ति योग, भक्ति के द्वारा कैसे भगवान से जुड़ा जाए। और 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक भगवान ने सिखाया ज्ञान योग, ज्ञान अर्जित करके कैसे भगवान को समझा जाए। और इतना सब समझाने के बाद में भगवान ने ये नहीं कहा डंडा लेके मारूंगा, गीता पढ़नी पड़ेगी, हाँ मानना पड़ेगा मुझको, नहीं, भगवान ने हमें आजादी दी है, जैसी तेरी इच्छा वैसा कर, यथा इच्छा सी तथा कुरु। भगवान ने कहा जैसी इच्छा है वैसा करो, इसमें से कुछ भी चुन सकते हो, लेकिन समझदार वही है जो भक्ति योग का पालन करे, क्योंकि भक्ति योग बड़ा सरल है। तो ये भगवत गीता की महानता है, ये है भगवत गीता जिसमें भक्ति योग सिखाया गया। तो ऐसी अब भगवत गीता के लिए शंकराचार्य कौन कह रहे हैं? शंकराचार्य। ज्यादातर शंकराचार्य लोग आजकल जो हैं वो विष्णु भक्त या कृष्ण भक्त के खिलाफ बोलते हैं, ऐसा सुना गया देखा गया है। लेकिन जो ओरिजिनल शंकराचार्य पीठ है, पीठाधीश शंकराचार्य जो स्वयं शिव जी के अवतार हैं, वो भगवान का गुणगान गाते हैं। वो कहते हैं भगवत गीता के लिए बोलते हैं, मलिने मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सगृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। उन्होंने कहा कि मलिन मोचनम पुंसाम जलम स्नानम दिने दिने, इस शरीर पे जो मल लग जाता है, मिट्टी लग जाती है, पाप लग जाते हैं, उसे धोने कहां जाते हैं जी? हरिद्वार, ऋषिकेश, और अपने पाप को धोकर आते हैं, मिट्टी लगाकर मड़ बात करके आते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? मलिन मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, हर रोज नहाएंगे तो ऊपर की मिट्टी निकलेगी, लेकिन जो अंदर की मिट्टी है, चेतो दर्पण मार्जनम, कैसे होगा? चेतना के दर्पण का मार्जन। तो बताया है सकृत गीता अमृत स्नानम, गीता अमृत का स्नान जो करेगा, संसार मल नाशनम, इस संसार का जो मल इकट्ठा है ना, तुरंत पहली बार में उसका क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। हाँ, तो ये अमेजिंग चीज भगवत गीता के बारे में बताई है। आगे वो कहते हैं, दुनिया का जरा ध्यान से शंकराचार्य क्या लिख रहे हैं। सिर्फ कुछ ही श्लोकों में उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के बारे में वर्णन किया है। ये पद्म पुराण से बोल रहे हैं, ये अपनी इच्छा से कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो पद्म पुराण ग्रंथ में शंकराचार्य लिखते हैं, गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नवे शांति ही पापानी पूर्व जन्मानि कृतानि च। वो क्या कहते हैं? गीता अध्ययन शीलस्य, जो व्यक्ति गीता का अध्ययन करता है, प्राणायाम परस्य च, और गीता को क्या करता है? प्रणाम करता है। नैव संते ही पापानी, पाप सोच भी नहीं सकते, जाऊं कि ना जाऊं इस व्यक्ति के पास में, सोच भी नहीं सकते। पूर्व जन्मानि कृतानि च, और आप नहीं सोच सकते कि मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया हो तो रह जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं, प्रभु जी अब एहसास हुआ है बड़े पाप किए, कैसे शुद्ध हो? कुछ नहीं करना जी, बस भगवत गीता को प्रणाम करना है और रोज उसका पाठ करना है। भगवत गीता सुनने से, पढ़ने से, हरि नाम जपने से ऐसा कोई पाप नहीं है जो आप सोच सके, सब पाप समाप्त हो जाता है। ये भगवत गीता की महिमा कौन कह रहे हैं? शंकराचार्य। सोचिए जरा, जस्ट इमेजिन, शंकराचार्य कह रहे हैं इस बात को। और आगे पद्म पुराण के अंदर और विस्तार पूर्वक बताया गया शिव पार्वती संवाद। किसका संवाद? शिव, शिव जी को तो आप मानते हैं ना, कई कई वर्षों से उन पे ठंडा ठंडा जल चढ़ा रहे हैं, सोमवार के दिन कैलाश पे रहते हैं, नाराज भी नहीं होते हैं कि ठंडी में ठंडा चढ़ाते हो। हाँ, तो ये इसीलिए वो आशुतोष हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, कोई बात नहीं, दे तो रहा है, कुछ ले नहीं रहा। हाँ, तो भगवान बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे भक्त से। तो शिव जी से पार्वती पूछती हैं कि बताइए जरा, ये जो गीता गीता आप पढ़ते रहते हो छुप छुप के, ये है क्या? तो बता रहे हैं शिव जी, कहते हैं हिमालय की पुत्री सुनो। कौन सुनो? शैल पुत्री, हिमालय की पुत्री, क्योंकि हिमालय की पुत्री हैं पार्वती। हिमालय की पुत्री सुनो, ये वेदों से भी बढ़कर है, तुम इसको सुनते ही आनंद की वृद्धि पाओगी। क्या पाओगी? आनंद की वृद्धि पाओगी। और ये मेरा स्वतः अनुभव है, जिस व्यक्ति ने भगवद गीता को अपने जीवन में पढ़ना शुरू किया, गारंटेड वो व्यक्ति और कुछ करना पसंद ही नहीं करेगा, उसे लगेगा बस जब समय मिले तो गीता पढ़ लूं बस। वाह, इतना मतलब फल है, रस का भरा हुआ पूरा। और कान में जाते ही, जैसे आज आप सुन रहे हैं और आपके कान में भगवत गीता जाएगी, कान में जाते ही भौतिक इच्छाओं की समाप्ति हो जाती है। बहुत ही और यम के दूत, यमराज से बहुत लोग डरते हैं, हाँ जी नरक जाना पड़ेगा, काम बड़े गलत किए छुप छुप के अंधेरे में, हाँ कोई देख ना ले भाई, कोई देख ना ले। तो ऐसे जो हैं यमराज से डरते हैं, यम के दूत उस व्यक्ति के पास आ भी नहीं सकते जिसने भगवत गीता हाथ में पकड़ रखी है, अभी खोली भी नहीं है। हरी बोल। तो ऐसे ही एक कथा आती है पद्म पुराण में, उसमें गीता के बारे में महात्म बताया गया, गीता महात्म्य। उसमें वर्णन करते हैं कि मेरु पर्वत के ऊपर एक जगह है जिसका नाम है अमरावती। क्या नाम है? अमरावती में इंद्र रहते हैं, और इंद्र जो हैं उन्होंने विश्वकर्मा से इंद्र लोक को बनवाया, उसको अमरावती भी कहते हैं और इंद्र लोक भी कहते हैं। और इंद्र वहां पर अपनी पत्नी शची के साथ में पूज रहे। तो कई लोग सोचते हैं शची माता प्राण धन गौर हरि, मतलब इंद्र की पत्नी के पुत्र है शची माता के प्राण धन गौरांग महाप्रभु। नहीं, जगन्नाथ मिश्र की पत्नी का नाम भी शची माता था, जो स्वयं यशोदा मैया है और धाम नवदीप में कलयुग में प्रकट होती हैं, वो अलग है। ये शची कौन है? इंद्र की पत्नी है। ये पुण्य कर्म करता है कोई व्यक्ति 100 अश्वमेघ यज्ञ, कितने यज्ञ? 100 अश्वमेघ यज्ञ, एक अक्ष में यज्ञ करना बड़ा कठिन है। एक घोड़ा लेना होता है, उस घोड़े के सर पे पताका लगानी होती है, मुझसे बड़ा कोई वीर नहीं, और उसको छोड़ना होता है। और जिस जिस जगह से जाएगा, जिसने रोका उससे युद्ध करो, और युद्ध में विजय प्राप्त करके उसके सिंहासन को छीन के, उसके धन को छीन के एकत्रित करो। ऐसे पूरे विश्व में जब जीत जाओगे तब एक यज्ञ समाप्त होगा। ऐसे कितने यज्ञ कर लेगा? 100। तब जाकर इंद्र की गद्दी प्राप्त होगी। तो इंद्र जो है वो बड़े गर्वित होते हैं, मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ की, बड़ा वीर हूं मैं, कोई राक्षस मुझ पे वार नहीं कर सकता। और अपनी पत्नी के साथ सभी देवी देवता 7 लोगों के उनकी क्या करते हैं, उपासना करते हैं। और हमें भी बड़ा इंटरेस्ट है, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, 7 अप्सराएं मिलेंगी वहां पर। यहां पर एक तो संभली नहीं, वहां पर 7 कैसे संभले? तो सोचना ये चाहिए कि इंद्र लोक में आप जाएंगे ना, तो वहां पर एक बार इंद्र बैठे थे, और इंद्र बैठे थे, बैठे बैठे इंद्र ने देखा कि एक सुंदर सा व्यक्ति है, बहुत ही तेज निकल रहा है उसके शरीर से, और वो सुंदर सा व्यक्ति क्या कर रहा है, कई विष्णु दूत, 4 हाथों वाले विष्णु दूत जिनके 4 हाथ होते हैं। अगर आप वैकुंठ धाम जाएंगे ना तो 2+2 फ्री मिलता है, 2 हाथ तो है ही है, 2 और लग जाते हैं वैकुंठ धाम में, 4 स्पेशल बेनिफिट। तो विष्णु दूत 4 हाथों वाले इंद्र के धाम में, इंद्र के लोक में लेकर के किसको आए, एक सुंदर व्यक्ति को लाए। और इस व्यक्ति को लाए ना तो इसको देख करके सभी जितने भी देवी देवता थे इंद्र की उपासना छोड़ करके उस व्यक्ति के उपासना करने लगे, आरती उतार रहे हैं, चंवर डुला रहे हैं, मोर पंख डुला रहे हैं, बड़ा ही उसके साथ में ऐसा ट्रीटमेंट जैसे अभी कथा चल रही हो और कोई ऐसा स्पेशल व्यक्ति आ जाए कि आप कथा छोड़कर भाग जाए, ऐसा तो हमें कैसा लगेगा, अरे भाई रुको रुको रुको, ऐसे वो बोल रहे इंद्र रुको रुको, कुछ रुका ही नहीं, सब भाग गए, सब भागे। तो सोचा कहां गए, इतने में सप्त लोक ब्रह्म लोक के ऋषि मुनि उतर आए उसकी उपासना करने, गंधर्व लोक से गंधर्व आ गए, अप्सराएं आ गए, नृत्य करने लगे, गान होने लगा, कीर्तन होने लगा। अरे कौन है ये व्यक्ति, ये सोचते सोचते इंद्र अपने आसन से गिर पड़े, गिरे तो उनका मुकुट भी जमीन पे गिरा, जब मुकुट जमीन पे गिरा तो बाकी विष्णु दूतों ने मुकुट उठा के उसके सिर पे लगा दिया, बोले आज से ये इंद्र राजा हैं। और वो तो नीचे गिरे हुए थे तो उनकी गद्दी पे भी बिठा दिया, बोले तुम्हारी गद्दी है। कह रहे मेरा क्या होगा, कह रहे हमें नहीं पता, हमें तो ऑर्डर मिला था, अब नया इंद्र ये है। ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसमें 14 मनु बनते हैं, और 14 मनु के समय में 5,000 इंद्र परिवर्तन हो जाते हैं। सोचिए आप जरा, इंद्र रोज बदल रहे हैं, रोज। इंद्र गद्दी का नाम है, आदमी का नाम नहीं है, इंद्र लोक का जो राजा है वो इंद्र बोला जाता है। हाँ, तो ये इंद्र लोक के राजा बदल रहे हैं, जैसे गणेश, ये व्यक्ति का नाम नहीं है, गणों में जो ईश, हाँ, जो शिवजी के गणों में सबसे अग्रणी है वो गणेश, और गणेश भी बदलते हैं क्योंकि ये जीव आत्मा है ना, मृत्यु हो रही है, शरीर जा रहा है, फिर बदल रहे हैं, पुण्य कर्म अर्जित करके कोई गणेश बन रहा है, कोई जा रहा है दुर्गा बन रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है और वो इंद्र बन रहा है। तो इस तरह से सब अलग 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 चीजें बनते हैं। तो ये इंद्र भी हैरान थे, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्षीर सागर में लेटे हुए शिरोदक्षाय विष्णु के पास जाओ, वही अवतारों के निर्णयातक हैं, निर्णय लेते हैं। पहुंच गए क्षीर सागर में, प्रार्थना करी, मिल्की वे गैलेक्सी जिसे आप बोलते हैं अंग्रेजी में, क्षीर सागर, क्षीर मतलब दूध, सागर मतलब दूध का सागर, मिल्की वे गैलेक्सी अंग्रेजी में बोलते हैं, क्षीर सागर में पहुंच गए, भागवत में वर्णन है इसका, तब साइंस नहीं आई थी, 5,000 साल पहले लिख दिया है वेद व्यास जी ने। क्षीर सागर में गए और प्रार्थना करी, कहा भगवान मेरी गद्दी छूट गई, कहां जाऊं? भगवान बोले चिंता मत करो, ये गद्दी इस व्यक्ति को इसलिए प्राप्त हुई है क्योंकि इसने क्या किया है। बोले मुझे बताया इसकी डिटेल, ये बड़ा पापी था, दुराचारी था, इसने कभी कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, कैसे आ गया स्वर्ग तक, कोई पुण्य नहीं है इसके खाते में। कहा तुम भूल गए हो, किससे बात कर रहे हो, मैं विष्णु हूं, तुम जानते हो इसने क्या किया है, इसने सिर्फ भगवत गीता का पाठ किया है निरंतर, रोज 5 श्लोक पढ़ता था आजीवन, बचपन से बुढ़ापे तक, रोज कितने श्लोक, 5, बस सिंपल फॉर्मूला, और क्या बन गया। तो उन्होंने कहा अब ये यही रहेगा, बोले नहीं अभी सफर समाप्त नहीं हुआ, अभी इंद्र की गद्दी से जब हटेगा तो ये वैकुंठ धाम में रहेगा, इसकी अभिलाषा थी कि मैं थोड़ा भोग करूं तो इसलिए यहां इसको हॉल्ट दिया है, मिडवे, जैसे जयपुर जाते हैं ना मिडवे में खाते हैं स्नैक्स, ये इंद्रलोक में स्नैक खा रहा है, ये जाएगा अभी कहां, वैकुंठ धाम। और वहां का निवासी है, क्यों क्या किया इसने? गीता का पाठ किया है, बस ये महिमा गीता पाठ करने की। अब भागवत में वर्णन है, तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, कहा जाओ गीता पाठ करो। तो इंद्र चल दिए उतर के दुखी मन से कि अब मेरा टाइम खत्म हो गया, और गए और जाकर के उन्होंने वहां पर एक भक्त थे जिनका जिनका नाम वर्णन आया है कि एक एक ऋषि थे, और वो गोदावरी नदी का किनारा था। उस स्थान का नाम था कलेग्राणी। क्या नाम था? कलेग्राणी। और वहां के भगवान का नाम था, जो विष्णु के अवतार हैं, उनका नाम था कले ईश्वहा, ऐसे भगवान पूजे जाते हैं। और उन कलेग्राणी नगर जो था वहां पर एक ब्राह्मण को देखा जो गीता पाठ पढ़ रहा था और भक्तों को सिखा रहा था। तब वो सीधे चलते चलते कहां गए, उस व्यक्ति को प्रणाम किया और कहा अब मैं आया हूं आपसे क्या सीखने, गीता सीखने। तो सोचिए श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन का हर भक्त गीता पढ़ता है और गीता बांटता है और गीता समझता है और अपनाता है, विशेष कृपा है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे भक्त के लिए स्वर्ग जाना मुश्किल नहीं है, जीवन में अगर एक बार भी गीता पढ़े तो स्वर्ग को चले जाओगे, लेकिन अगर उसको प्रेम पूर्वक भजन किया अपने जीवन में उतारा तो हमें हॉल्ट नहीं लेना पड़ेगा स्वर्ग लोक में, कहां जाएंगे सीधा धाम, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम चले जाएंगे। तो गीता का बड़ा महत्व है। और उस व्यक्ति ने वहां पर इंद्र ने अपना वर्णन लिखा है, इंद्र कहते हैं मैंने जब गीता पाठ सीखा और गीता के श्लोकों का उच्चारण प्रारंभ किया, सच कहता हूं भगवान वो सुख मुझे स्वर्ग में इंद्र की गद्दी पे नहीं मिला जो सुख मुझे आज आज भगवान की सेवा दास बनने में जो मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है, आनंद का अनुभव कर रहा हूं, ऐसा आनंद का सागर भर गया है मेरे हृदय में गीता पाठ करने से। तो आगे श्री वैष्णव तंत्र, वैष्णवों का एक तंत्र है, तंत्र और मंत्र होते हैं ना, तंत्र वैष्णवीय तंत्र सार एक ग्रंथ है, उसमें उसके 17वें श्लोक में लिखा है गीता शास्त्रेर मतिर्नास्ति सर्वं तन्निष्फलं जगु धिकातस्य जान दात्रं व्रतं निष्ठां तपो यस्सः। गीता शास्त्रेर मतिर्नास्ति। अब जो व्यक्ति गीता इतना श्रवण करने पे महिमा सुनने पे भी उसकी मति गीता पढ़ने में नहीं होती है, गीता शास्त्रेर मतिर नास्ति, मति नहीं है उसकी, मन नहीं लगता, जी प्रभु जी इतने संस्कृत के श्लोक है, टफ लैंग्वेज, मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। तो सर्वम तन निष्फलम जगु, उसने जीवन में जितने भी कार्य करेगा ना, चाहे पुण्य हो, खिचड़ी बांटे, हलवा बांटे, नाचे, धाम जाए, यात्रा करे, सब क्या हो जाएंगे, निष्फलम जगु, जग में सब कुछ निष्फल हो जाएगा। धिक तस्य जान दात्रम, और यहां तक बोला गया है कि उसके द्वारा किया गया ज्ञान, उसके द्वारा किया गया दान, व्रतम व्रत और निष्ठम निष्ठापूर्वक किया गया व्रत, तपो करी गई तपस्या, क्या हो जाएगी, सब निष्फलम। तो इसीलिए लोग बड़ा झगड़ा करते हैं, कहते हैं जी हम जब जाते हैं, कहते हैं अभी भगवद्गीता मैराथन आएगा अगले महीने, 2 महीने में दिसंबर में, कहते हैं जी भगवत गीता पढ़िए आपका जीवन सुधर जाएगा, अरे इस कौन वाले ना जबरदस्ती गीता पकड़ा देते हैं है? अब हमारे घर में तो गीता जब से आई है ना, एक व्यक्ति बोल रहा था हम गीता अपने घर में नहीं रख सकते, क्यों अजी महाभारत होता है हमारे घर में अगर हमने गीता पढ़ी तो, ऐसा लोगों का भ्रम है, गीता रखेंगे तो क्या होगा। तो हमने उनसे पूछा कि अच्छा एक बात बताइए अभी तक तो गीता नहीं आपके घर, कह रहे नहीं है, तो महाभारत होता है, कह रहे हाँ जी वो तो होता है, मैं कहता फिर, अरे आपको मालूम नहीं है गीता नहीं रखेंगे तो ज्यादा महाभारत होता है, गीता रखेंगे तो कई घरों को परिवर्तित होते देखा है, दोनों पति पत्नी अगर ग्रंथ पढ़े भगवत गीता ना, उनका जीवन अवश्य मां भी बदलेगा, अवश्य बदलेगा, लेकिन आपको उसके लिए श्रद्धा होनी चाहिए, आदो श्रद्धा, भक्ति की प्रथम सीढ़ी है श्रद्धा। इतना श्रवण करने पर भी नहीं माने कि भगवत गीता की कोई महिमा है, शिवजी को भी इग्नोर कर दें, पार्वती को भी कर दें, गणेश को भी कर दें, तो भैया फिर भगवान भी आपको इग्नोर कर देंगे, दुख में संसार में रह जाओगे। आपको ऑप्शन मिला है प्रभुपाद जी के द्वारा गीता श्रवण करने का। तो इसलिए गीता रखने से महाभारत नहीं होता, महाभारत खत्म होता है। आगे अब वर्णन करते हैं गीता या पुस्तकम यत्र नित्य पात्र पाठश्च वर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयाग आदानि भूतले। बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर श्लोक पद्म पुराण का। गीताय पुस्तकम यत्र, जिस घर में गीता पुस्तक है, नित्य पटश्च वर्तते और उसका पाठ होता है। सुनिए जी ध्यान से, क्या होता है उस घर में जहां पाठ होता है और गीता है, तत्र सर्वाणि तीर्थानि, सारे तीर्थ उस घर के अंदर विराजमान हो जाते हैं। प्रयाग आदानी भूतले, और इस भूतल पे प्रयाग उसके घर में उतर जाता है। श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश की जगन्नाथ बलदेव सुब्रमण्य गौर नेता यशोदा दामोदर की जय। कथा को श्रवण करिए, भगवान की कृपा श्रवण से ज्यादा मिलती है, दर्शन से भी मिलती है, लेकिन श्रवण से ज्यादा मिलती है। तो श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में अब चर्चा करेंगे। हाँ, आधा घंटा है हमारे पास। तो श्रीमद् भागवत पुराण किसने लिखा? हाँ जी, भागवत भी गणेश जी ने लिखा, महाभारत लिखा गणेश जी ने, वेद व्यास जी ने लिखा स्वयं, आप उनकी मेहनत को खत्म कर देंगे, स्वयं उन्होंने लिखा। तो वेद व्यास जी ने 108 उपनिषद लिखे, 4 वेद लिखे, वेदांत सूत्र लिखे और 18 पुराण लिखे। बताते हैं कई भक्त, संख्या तो पता नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं वेद व्यास जी ने अपने जीवन में 1 करोड़ श्लोक लिखे। कितने करोड़?
1 करोड़।
अरे बाप रे, कैसे व्यक्ति हैं ये? व्यक्ति हैं? कौन है ये? भगवान है। ये व्यक्ति लिख सकता है 1 करोड़ श्लोक? और लोग बोलते हैं जी इंसान की लिखी हुई गीता पढ़ते हो, भागवत पढ़ते हो। इंसान की नहीं लिखी हुई है, किसने लिखी है? स्वयं शक्ति आवेश अवतार है भगवान के वेद व्यास, कृष्ण द्वायपन व्यास, वेद व्यास उन्होंने लिखा है। आपकी जो मैथमेटिक्स है वो इंसान ने लिखी है, आर्यभट्ट। उसमें लिखते हैं 2+2=4 और उसको मानते हैं। कभी क्वेश्चन पूछा, अजी 2+2=4 पढ़ाते हैं, 2+2=5 क्यों नहीं होता, 6 क्यों नहीं होता? प्रूफ करके दिखाओ 2 और 2=4 होता है, प्रूफ करो। बोले जी 2 केले लिए, दोनों देखो 1, 2, 3, 4, ये कोई प्रूफ हुआ? प्रूफ करके दिखाओ, कोई प्रूफ नहीं है। आर्यभट्ट ने सोचा, लिख दिया, आपने मान लिया। इकोनॉमी चल रही है पूरे विश्व की आज उस 2+2=4 पे, 2 और 2=4। लेकिन वेद व्यास ने 1 करोड़ श्लोक लिखे स्वयं भगवान ने, उसमें हमें विभिन्न प्रकार का संशय है। और जो संशय रखता है ना, भगवत गीता कहती है संशय आत्मा जो बुद्धि है, उस व्यक्ति को ना इस लोक में सुख मिलेगा ना परलोक में सुख मिलेगा। संशय मत रखो भगवान पे, तो क्या रखो? अटूट श्रद्धा रखो। क्या रखो? श्रद्धा रखो, बस। संशय नहीं, संशय आत्मा के लिए कोई सुख नहीं संसार में, इसीलिए दुखी है लोग। मैथमेटिक में भरोसा कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का एग्जाम क्लियर कराने के लिए बच्चों के लिए ट्यूशन लगा रहे हैं, गीता पढ़ने चला जाए बच्चा तो गीता छीन करके साइड रख देंगे। क्या पढ़ रहा है ये कोई वक्त है पढ़ने का? अरे यही तो वक्त है, तुमने नहीं पढ़ी उसे तो पढ़ने दो। एक बार ऐसे हुआ, एक बच्चा इस्कॉन केंद्र में आ गया, 15-16 साल का था, उसे अच्छा लगने लगा सुनना। और जब वो आया तो कहा मंदिर में ही रहूंगा, ब्रह्मचारी बनूंगा, निर्णय ले लिया। उसकी माँ बाप बड़े गुस्सा हुए, पत्नी बोली अपने पति से, क्या जी आप इतने बड़े CA हैं कंपनी में, गाड़ी आती है आपको लेने के लिए, हाँ उसके बाद भी आप क्या करते हैं? हाँ क्या करते हैं? अपने बच्चे को आप रोक नहीं पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपका बच्चा मंदिर में साधु बनने जा रहा है। कहा अच्छा जी मैं जाऊंगा, मैं बात करूंगा। वो आए, हाँ, बॉम्बे की बात है, बॉम्बे की। तो आए प्रीचर को, बोले प्रचारक जो थे जो उनको कथा देते थे, श्रवण कराते थे, कहा आपने हमारे बच्चे को मंदिर में रख लिया है, कोई ये कोई उम्र है? हाँ कहा जी कितनी उम्र है आपके बच्चे की? कहा अभी 16-17 साल का है। तो कहा आपकी कितनी है? कहा 45 साल का हूं। कहा तो फिर आप आ जाइए। आप आ जाइए। कहा पूछ के बताऊंगा पत्नी से। घर गया, पत्नी को बोला कि देखो ऐसा है, वो कह रहे हैं ऑप्शन है आपके पास में, या तो बच्चे को छोड़ दो या तो आप आ जाओ। तो बोले आपने क्या कहा? मैंने कहा पूछ के बताऊंगा। हाँ ठेको फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप रह जाओ, क्योंकि आप कमाते हो, वो तो चला गया, कोई बात नहीं। तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल है, लोग किसी भी उम्र में भगवत गीता पढ़ना नहीं चाहते। पहले खुद जवान हो रहे होते हैं, बाद में फिर बच्चे जवान हो रहे होते हैं, तो कौन सा समय निकलेगा गीता भागवत पढ़ने के लिए? तो इसलिए हमें आज ही इन शास्त्रों को समझना चाहिए, इन पर अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रीमद् भागवत 18 पुराणों में से सबसे उत्तम पुराण है। तीन प्रकार के गुण होते हैं, राजसिक, सात्विक और तामसिक। भगवान जो कृष्ण है वो तीन प्रकार के गुण अवतार लेते हैं। क्या लेते हैं? गुण अवतार। गुण अवतारों में जब भगवान सतोगुणी अवतार लेते हैं उनका नाम है विष्णु। सब बोलिए साथ में, क्या है?
विष्णु।
जब भगवान राजसिक अवतार लेते हैं तो उनका नाम है ब्रह्मा। क्या है?
ब्रह्मा।
सब लोग नहीं बोल रहे हैं, ब्रह्म में तो नहीं है कहीं, ब्रह्मा। जब तामसिक अवतार लेते हैं तो नाम होता है भगवान का शिव। क्या नाम होता है?
शिव।
ये सब कौन ले रहे हैं अवतार? कृष्ण। कृष्ण जब अपने गुण अवतार लेते हैं तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं। तो इन तीनों अवतारों को समझने के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश को समझने के लिए तीन प्रकार के पुराणों की रचना हुई। तो तामसिक पुराणों में 6 प्रकार के पुराण हैं, मत्स्य पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण। शिव पुराण कौन सा पुराण हो गया? तामसिक पुराण। स्कंद पुराण, अग्नि पुराण और कुर्मा पुराण। ये 6 पुराण तामसिक पुराण हैं जिससे शिव जी को समझा जाए। राजसिक पुराण है ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवत पुराण, मार्कंडे पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म पुराण और भविष्य पुराण। तो 6 पुराण है राजसिक। और अब आते हैं सात्विक पुराण। सात्विक पुराणों में है विष्णु पुराण, नारद पुराण, गरुण पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण और अंत में श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण, इसलिए प्रभुपाद जी ने ये दोनों चीजें चुनी। श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण होता है इस्कॉन केंद्रों में सुबह 8 से 9 और गीता कई महिमा का वर्णन होता है शाम को 8 से 9। तो उन्होंने कहा दोनों पढ़ने चाहिए, भागवत भी और गीता भी। तो इस जो भागवत पुराण है इसमें कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक, 18,000। और इसको अपने आप से समझना मुश्किल है, इसके लिए हमको कोई एक व्यक्ति गुरु हमारे जीवन में होना चाहिए जिसके द्वारा हम पारंपरिक अनुसार इसे समझ सकें। और आगे वर्णन आता है कि इस पुराण में 12 स्कंदों में इस पुराण को बांटा गया है। कितने स्कंदों में? पार्ट्स में 12। जैसे भगवत गीता को 18 अध्यायों में बांटा गया है, ऐसे श्रीमद् भागवत को 350 अध्यायों में बांटा गया है, 350 chapters, और 12 कैंटोस, अलग अलग ग्रंथ के अलग वर्णन है। तो इस तरह से जो भगवत गीता है उसमें 5 विषयों का चर्चा होती है, 5 विषयों की चर्चा है। कोई बता सकते हैं कौन से विषय की चर्चा है 5 भगवत गीता में? हाँ जी, माता जी बता रही हैं, जीव, प्रकृति, ईश्वर, काल और कर्म। हाँ, ये 5 विषयों की चर्चा भगवत गीता में होती है। लेकिन भागवत में कौन से विषय की चर्चा है? भागवत में उसका दुगना, क्योंकि भगवत गीता है 12th पास और भागवतम है ग्रेजुएशन, तो उसमें बढ़ जाता है। भगवत गीता में 5 विषयों की चर्चा है और भागवतम में 10 गुरुतम विषयों की चर्चा है। उसमें से प्रथम विषय है सर्ग। क्या है? सर्ग। सर्ग के अंदर बताया गया 24 प्रकार के तत्वों से हमारा शरीर बनता है। कितने प्रकार के जी? सब लोग बोलिए 24। 24 में 5 तो हमारे ये पंच भौतिक शरीर है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, जल। इन 5 तत्वों से बनकर हमारा ये भौतिक शरीर बनता है। 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, आंखें, नाक, कान, मुंह और त्वचा। तो इस तरह से, और जिह्वा। तो ये 5 हमारी क्या है? ज्ञान इंद्रियां हैं। और 5 कर्म इंद्रियां हैं, 2 हाथ ये कर्म करते हैं, 2 पांव और जननेंद्रियां जिनसे हम बच्चों की उत्पत्ति करते हैं और अपने शरीर के मल को त्यागते हैं। ये कर्म इंद्रियां, इनसे हम कर्म करते हैं अपने जीवन के। ये कितने हो गए अभी? 15। और 5 रस हैं, आंखों का रस, नाक का रस। नाक का क्या है? रस, गंध रस, सूंघना। जीव का कौन सा है? स्वाद। और रूप आंखों से, और शब्द कानों से, और त्वचा से स्पर्श। तो इस तरह से ये कितने बन गए? 20। और अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि अहंकार और संस्कार। तो ऐसे बनाकर कितने बन जाते हैं? 24 तत्व आत्मा के ऊपर धारण करके रखते हैं हम शरीर के 24 तत्व। इसके वर्णन कहां हुआ है? भागवत में। अभी लोग सोचते हैं गीता में है, तो गीता के विषय क्या है? प्रकृति, ईश्वर, काल, जीव और कर्म। लेकिन भागवत का विषय है सर्ग, सृष्टि के 24 तत्वों का वर्णन। विसर्ग दूसरा है विषय, विसर्ग जिसमें गौण सृष्टि के बारे में वर्णन है कि राजसिक, तामसिक और सात्विक ये गुण क्या हैं, इसमें व्यक्ति कैसा होता है और किस तरह से ये सृष्टि के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है, कैसे कृष्ण परम भगवान है, क्यों उनको इस्कॉन केंद्रों में परम भगवान कहा गया, क्योंकि इस्कॉन केंद्रों में भागवत को पढ़ा जाता है, बाकी जगह भागवत से पैसे कमाए जाते हैं, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं है क्या बोलना है। सीधा 10वां स्कंद खोलते हैं, रासलीला का वर्णन करते हैं, लोग नाचते हैं, गाते हैं राधे 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 और चले आते हैं घर अपने। उनसे पूछिए आपके जीवन में सत्संग का मतलब है परिवर्तन, कितना परिवर्तन आया। अभी भी बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तो फिर इसका मतलब आपने सत्संग किया ही नहीं। सत्संग का मतलब सत्वंग, सत्संग में जो जाएगा ना उसका क्या है, उसका जीवन परिवर्तित होगा। तो यह है विसर्ग। और दूसरा विषय है, तीसरा विषय स्थानम, भौतिक और आध्यात्मिक का भेद बताया गया है। यह भौतिक जगत जो है यह है 1/4 और आध्यात्मिक जगत है 3/4। जैसे पृथ्वी पे जल 3/4 और पृथ्वी पे पृथ्वी का जो मिट्टी है वो है 1/4, ऐसे ही ये भौतिक संसार है 1/4 और आध्यात्मिक संसार है 3/4। कई लोग पूछते हैं जी सब लोग भक्त बन जाएंगे तो ऊपर भीड़ नहीं लग जाएगी? नहीं लगेगी जी, 3 गुना ज्यादा जगह है वहां पे, आओ आराम से सब लोग बोलते रहो हरे कृष्णा 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 हरे 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 और चौथा विषय है पोषणम, पोषणम कृष्ण कैसे अपने भक्त का पोषण करते हैं, कैसे कृष्ण अपने भक्त की रक्षा करते हैं, अनेकों उदाहरणों से प्रहलाद महाराज ये भागवत में मिलेगा आपको, ध्रुव महाराज, गजेंद्र, कार्तिक का महीना चल रहा है, इतनी सुंदर कथाएं हैं कैसे अपने भक्तों की रक्षा करी भगवान ने। और आप रक्षा करवाते हैं किससे? नींबू मिर्ची धनिए से। एक व्यक्ति ने मर्सिडीज गाड़ी खरीदी, मर्सिडीज गाड़ी के अंदर शीशे पे लगा रखा था क्या? नींबू और मिर्ची। हमने पूछा भाई क्यों लगाया है? कहा जी एक्सीडेंट ना हो जाए। हाँ उस व्यक्ति से पूछो, पोषणम का विषय भागवत बता रहा है और तुम नींबू मिर्ची से एक्सीडेंट बचा रहे हो। अगर नींबू मिर्ची में इतनी शक्ति है तो हमारे हर साल इतने सैनिक मारे जाते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे, क्यों नहीं सबके गले में नींबू मिर्ची टांग देते हैं? और घर के आगे कोई रख दे हल्दी, मिर्ची, नमक, बोलते हमारे घर पे किसी ने कोई टुटका कर दिया है। तो पूछते भक्त क्या करें? कहा जी भाई एक पर्ची लिख के रख दो, टमाटर आलू भी रख दो, कम से कम सब्जी बन जाएगी। सोचने वाली बात है। पोषणम, पोषणम दे रहा है भागवत, कृष्ण रक्षा करते हैं। योग क्षेमम वहां में हम, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा भगवान। अब भागवत में गीता में बोल रहे हैं ठोक ठोक कर, तुम चिंता मत करो, बस क्या करो, मेरा भजन करो। और हम नींबू मिर्ची धनिया, ज्योतिष, अंगूठी, पुखराज, इस पे अटके हुए। अगर पुखराज में इतनी शक्ति होती तो कोई संसार छोड़ के जाता ही नहीं। रूबी में, माणिक में इतनी शक्ति होती तो क्यों चले जाते हैं? और मरने के बाद में पुत्र और पुत्रियां जो होती हैं वो पिताजी के हाथ से पहले अंगूठी निकालते, बाद में डेड बॉडी जाती है। कह रहे कहीं हमारी महंगी अंगूठियां ना जल जाए, हम शमशान वाले ले लेंगे। तो ये है, आपने जिनके लिए जीवन गुजार दिया वो तो व्यर्थ गया, भागवत के लिए जीवन गुजारिए। पांचवा विषय है उत्तह सृष्टि प्रेरणा, किस प्रकार से कर्म करें कि अपनी चेतना को बदलें। हम कर्म करते हैं शरीर के परिवर्तन के लिए। लोग सुबह सुबह बैठे हुए हैं पार्कों के अंदर, सांस भर भर के कसरत कर रहे हैं, पूछे क्या कर रहे हैं? जो अपने शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं। क्यों? बाबा ने बताया है बाबा ने बताया है कि मेरी शराब पीने से मेरे फेफड़े और मेरा लीवर खराब हो गया है, तो बाबा ने कहा है ये कसरत करने से मेरे फेफड़े और लीवर ठीक हो जाए। फिर क्या करोगे? फिर से शराब पीऊंगा। तो भैया ये क्या कर रहे हो? शरीर मिला है किस लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। कुत्ते बिल्ली की योनि में हम भक्ति नहीं कर सकते। दुर्लभ मानव देह लभ्या संसारे, ये दुर्लभ मानव शरीर मिल गया है, इससे क्या करना चाहिए? भगवान का भजन। ऐसे कर्म करो कि अपनी चेतना को अत्यंत शुद्ध कर लो। ऐसा करने के लिए भगवान ने हमको ये शरीर दिया, तो इसको कहते हैं उत्य सृष्टि प्रेरणा। छठा, भगवान ने इसमें बताया है मनवंतरों के बारे में वर्णन है। कुछ लोग घबरा जाते हैं, 2016 के दिसंबर में मंगल की छाया से पृथ्वी टकराने वाली है और सब प्रलय आने वाली है, एक एक घंटे चैनल चल रहा है, न्यूज चैनल, कुछ नहीं होने वाला, टीवी बंद करके हरिनाम जपा करो। बोले अगर कुछ हो गया, अरे तो हरिनाम जपते हुए मरोगे ना, तो भगवतधाम चले जाओगे। लेकिन वैसे होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान ने शास्त्र में वर्णन किया कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु परिवर्तन होते हैं। कितने मनु? एक दिन में। ऐसे ब्रह्मा जी के जो एक मनु है वो जाते हैं 71 बार चतुर्युगों के अंदर, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, और इस दिव्य चतुर्युगों की गणना है 43,20,000 वर्ष। इसको 71 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इसको 14 से मल्टीप्लाई करो, ये ब्रह्मा जी का दिन निकला एक, इतनी रात्रि। उसके बाद में जब ये रात्रि निकल जाएगी, उसके बाद ऐसे 30 दिनों का, 365 दिनों का एक वर्ष, और ऐसे ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, उसके बाद प्रलय आती है। बताओ जी, अभी प्रलय बहुत दूर है, कई बार आना पड़ेगा इस संसार में हमको, अगर हमने भक्ति नहीं की तो। तो इसे मनवंतरों का वर्णन अब भागवत में है। और सातवां है ईश अनुकथा, भगवान की कथाओं के बारे में वर्णन है। और कृष्ण कथा जो है इससे ज्यादा शक्तिशाली संसार में कुछ भी नहीं है। किसी व्यक्ति से पूछा जाए आप क्या हैं, तो बोलेगा मैं जी डॉक्टर हूं। और कितने बजे तक डॉक्टर रहते हैं? कह रहे ये कैसा प्रश्न है, पूरे जीवन डॉक्टर ही रहूंगा। अरे नहीं जी, रात को 12 बजे सोते हैं। हाँ जी सोता हूँ। तो रात को सपने में कभी कभी आप राजा नहीं बन जाते हैं? हाँ हाँ हाँ, सपने में मैं राजा बन जाता हूँ, मैं कई लोगों का कत्ल भी करता हूँ घोड़े पे बैठ के, बहुत अच्छा। और जब मैं मुकुट पहनने वाला होता हूँ तभी मेरी पत्नी चाय के लिए उठा देती है। तो बोले फिर जब उठाती है तब आप क्या होते हैं? करा मैं फिर डॉक्टर बन जाता हूँ। तो कहा फिर 6 घंटे 7 घंटे आप क्या थे? राजा थे। तो सही मायने में आप कौन है? हम आत्मा भगवान के नित्य दास हैं, ये हमारा असली डेजिग्नेशन है, ये असली हैं हम। लेकिन अभी कुछ दिन की जीवन के लिए, कितना लंबा जीवन है जी? 60 साल 70 साल, कईयों का तो इतना भी नहीं चल रहा, एक्सपायरी डेट जल्दी आ रही है। तो ये जो जीवन है कुछ समय के लिए हमें मिला है, इस जीवन के अंदर हम क्या कर रहे हैं? भूल गए हैं कि मैं कौन हूं, कृष्ण का दास हूं। तो कैसे याद करें प्रभु जी, हम भूल गए, परिवार में आकर हम भूल गए हैं। तो इसलिए शास्त्र में वर्णन है, नित सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कभु नए, बोलिए नित सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कभु नए, श्रवणादि शुद्ध चित्त करय उदय, श्रवणादि शुद्ध चित्त करय उदय। जितना श्रवण करेंगे उतने चित्त का उदय होगा और पहचान जाएंगे जीते जी कि मैं कौन हूं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। हाँ, मैं दास हूं भगवान का। हाँ, और अगर भगवान के दास बन जाओगे ना तो भगवान आपके पीछे पीछे घूमेंगे। यशोदा मैया ने कार्तिक के महीने में कृष्ण को उखल से बांध दिया। हाँ, ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, दर्शन हो जाए बस, दर्शन भी नहीं होता। ओम, कई वर्षों तक गर्मियों में तपस्या कर रहे हैं, आग जला के उल्टे खड़े हैं, पूरी हड्डियां गल चुकी हैं, ओम, भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं। लेकिन कोई जप कर रहा है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नित्य भागवत और भगवद गीता का पाठ कर रहा है, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता। वो व्यक्ति क्या कर लेता है, भगवान को अपने प्रेम की डोरी में बांध देता है और भगवान हिल भी नहीं पाते वहां से, वहीं के वहीं खड़े हैं और 30 दिनों तक खड़े रहेंगे, 14 नवंबर तक यहीं खड़े रहेंगे, है ना। तो बांध दिया हमने भगवान को। कौन बांधता है? भगवान के भक्त बांधते हैं, और कोई नहीं बांध सकता इस संसार में भगवान। तो ये वर्णन ईश अनुकथा की जो शक्ति है ये भागवत का वर्णन है। फिर आगे कहते हैं निरोध, क्या बोलते हैं निरोध। प्रलय के बाद जीव की क्या स्थिति होने वाली है? अभी लोग डर जाते हैं प्रलय हो गई तो क्या होगा, हम कहां जाएंगे, कहीं नहीं जाने, न जायते मृयायते वा कदाचिन। भगवत गीता में भगवान ने कहा आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, हम लोगों का न जन्म हुआ है न मरेंगे, जन्म तो शरीर का हुआ है और मरेगा भी शरीर। इसीलिए एक संत गाते हैं साधु ये मुर्दों का गांव, ये किसका गांव है, मुर्दों का। जैसे उसमें हम प्रवेश करते हैं जीवात्मा हमारा शरीर चलने लगता है, जैसे ही हम निकल जाते हैं हमारा शरीर गिर जाता है। मोबाइल में से सिम कार्ड निकाल दो सिग्नल आने बंद, सिग्नल में डाल दूसरे मोबाइल में डाल दो सिग्नल आने शुरू। ऐसे ही हम अलग अलग मोबाइलों में जैसे सिम डालते हैं, पहले नोकिया में डालते थे आज स्मार्टफोन में डालते हैं, ऐसे ही हम परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन सिम कार्ड का नंबर 10 सालों से हमारा वही है, आपका भी वही होगा। जीव आत्मा सनातन काल से वही है और सदा वही रहने वाली है, वही रहेगा, परिवर्तन नहीं होने वाला। हाँ, तो ये निरोध का वर्णन किसमें किया गया है, श्रीमद् भागवत में किया गया है। और मुक्ति, मुक्ति के बारे में बताया गया, व्यक्ति की मुक्ति क्या है, जब कोई जीव आत्मा जीते जी ये समझ जाए कि मैं कृष्ण का दास हूं, बस उस पल शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है जी, जीते जी उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, मुक्त भक्त है। क्या है? मुक्त भक्त। मुक्ति, मुक्ति पूछते हैं लोग जी मुक्ति क्या है, मरने के बाद मोक्ष करेंगे, जहां जाएंगे वहां जाएंगे, कुछ नहीं, जीते जी अगर कृष्ण के दासत्व स्वीकार किया, मुक्ति आपके चरण दबाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहे हैं अनुभव से, व्यास आसन पे बैठकर भगवान के सामने, कोई झूठ नहीं बोल रहे कॉमिक्स से, सच्चाई है ये। इसको अपने जीवन में ग्रहण करिए, आप देखिए कितना आनंद आएगा, बहुत ही आनंद का भंडार है श्रीमद् भागवतम। और आखिरी 10वां विषय जो है उसका नाम है आश्रय। क्या है? इसीलिए हम लोगों की कक्षा चलती है उसका नाम भी है आश्रय। आश्रय का मतलब है इस संसार में किसका आश्रय ले, तो भगवान भागवत में कहते हैं भक्त आश्रय। किसका आश्रय? भक्त आश्रय। क्योंकि हो सकता है कि मैं अगर आश्रय दूं तो कल को निकाल भी सकता हूं अपनी क्लास से। जय विजय को मैंने निकाल दिया था 3 बार, उनको हिरण्यकश्यपु हिरणाक्ष, कुंभकर्ण रावण, दंत वक्र और शिशुपाल बन के आना पड़ा। लेकिन अगर भक्त की शरण ग्रहण की हो किसी की, तो क्या होता है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान नहीं टलने देंगे भगवान। अगर कह दिया ना किसी ने चिंता मत करो प्रभु भगवान रक्षा करेंगे, करेंगे, भक्त ने बोल दिया ना, वो उनके सामने दंडवत करते रहो, हो सकता है करे करे ना करे, लेकिन किसी भक्त का आश्रय ग्रहण किया और भक्त ने कहा डोंट वरी चैंट हरी, बस हो गया, सब कुछ प्राप्त हो जाने वाला है, क्योंकि भक्त मिल गया है, भक्त आश्रय है। ये भगवान ने वर्णन किया है किसमें, श्रीमद् भागवत में। ध्रुव महाराज ने किसका आश्रय ग्रहण किया, नारद जी का। कौन है? भक्त है। प्रहलाद महाराज ने किसका आश्रय ग्रहण किया, नारद जी का। गजेंद्र ने किसका ग्रहण किया, तो ऐसे नारद जी जो हैं वो कहते हैं श्रीमद् भागवत से ऊपर कोई और पुराण नहीं है। शिव पुराण में जी ये लिखा है, देवी पुराण में ये लिखा है, अनेकों पुराण हैं, उन्हें उप पुराण कहते हैं, उनमें मत जाइए, सिर्फ भागवत को पढ़ लीजिए, क्योंकि भागवत के बारे में भागवत में ही वर्णन है। क्या कहा गया है, निगम कल्पतरो गलितम फलम शुग मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसम माल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। ये रसिकों का ग्रंथ है, जिसने गीता पढ़ ली ना 700 श्लोक, जहां गीता समाप्त होती है वहां से भागवत शुरू होती है। तो गीता भागवत नहीं है, गीता भगवत गीता है, भागवत वहां से शुरू होती है जहां गीता समाप्त होती है, क्योंकि गीता में भगवान ने अंतिम में कहा, क्या कहा? सर्वधर्मान परित्याजम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें अवश्य ही पापों से निवारण दूंगा, डरो मत। किसने कहा? भगवान। अब किसी व्यक्ति ने शरण ग्रहण कर ली अगर, तो क्या होगा? अब वो तो चाहता है भगवान के बारे में सुनना, ज्यादा से ज्यादा जानना। किसी लड़की से प्रेम हो जाए तो रात दिन उसके चक्कर काटते हैं घर के आसपास, कैसे भी पता चले मम्मी पापा क्या करते हैं। हम बाद में इंप्रेशन झाड़ेंगे, जब मिलेगी तो बोलेंगे क्या, अरे पता है मैं जानता हूँ आपके पापा वहां है ना बिजली बोर्ड में काम करते हैं, मुझे पता है। तो इस तरह से हम जब कृष्ण की शरण में जाते हैं ना, उससे प्रेम करते हैं, तो फिर उसके बारे में जानना चाहते हैं, और जब जानना चाहते हैं तो फिर 18,000 श्लोक भगवान को जनाने के लिए लिखे गए हैं आप लोगों के लिए श्री वेद व्यास जी के द्वारा। जानो भगवान को, भगवान और भक्त के बीच का संबंध कैसा है, अच्युत संबंध, कभी ना टूटने वाला। निगम कल्प तरो गलितम फलम, एक पेड़ पे बहुत सारे फल लगे हुए हैं, 18 पुराणों के फल, 108 उपनिषदों के फल, तीर्थों के फल, धामों के फल, लेकिन एक फल है जिसे कहते हैं भागवत फल, वो लटक रहा है, कैसा? गलितम फलम, गला हुआ है, और उसमें शुक मुखाद अमृत, उसके अंदर अमृत भी है, और तोते ने, शुक का मतलब होता है तोता, तोते ने क्या किया है उसमें मुंह मार दिया है, और मुंह मारने वाला जब तोता मुंह मारता है तो कौन से फल में मारता है? मीठे वाले में। तो सारे पुराण, सारे उपनिषद, सारे ग्रंथ, सारे तीर्थ, सारे धामों के फल में से एक ऐसा फल है जो कि बिना छिलके का है, बिना गुठली का है, इसमें क्या है? अमृत ही अमृत भरा हुआ है, बस ना गुठली है ना छिलका है, और ऊपर से सुखदेव गोस्वामी रूपक तोते ने इसको अपने मुख से जब प्रकट किया तो ये संसार को मिठास प्रदान करने वाला ग्रंथ बन जाता है। कौन सा ग्रंथ है? श्रीमद् भागवत। जो जो कहते हैं, जब ये भागवत का जब वर्णन आता है तो कहते हैं ओम नाम का उच्चारण जब होता है ब्रह्मांड में, ओम, उस ओम से निकलती है गायत्री, गायत्री से निकलते हैं वेद, वेद से निकलते हैं वेदांत सूत्र, और वेदांत सूत्रों से जब फिल्टर होकर सार निकलता है ना, तो वो कौन सा सार है? श्रीमद् भागवतम। इसीलिए वर्णन करता है पद्म पुराण, अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकते ना, करेंगे तो कहेंगे मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। तो पद्म पुराण दूसरा पुराण जो कि अब वर्णन कर रहा है भागवत पुराण का, वो कहता है भारते मानवम जन्म प्राप्य भागवतम नायह सूतम पापम पराधीने आत्मगता तु ते कृतः। भारते मानव जन्मम, पहला चीज जन्म कहाँ हुआ जी? भारत में। भारत में जन्म लेके प्राप्य भागवतम नायम, मेरा मन ही नहीं करता कि मैं भागवत सुनूं या पढ़ूं या रखूं, तो ऐसा व्यक्ति क्या है? सूतम पापम पराधीरो, उसने पाप की गुलामी स्वीकार की है। किसकी गुलामी? मतलब पाप राजा खड़े हुए हैं और उनकी गुलामी स्वीकार की है कि मैं आपका गुलाम हूं, भगवान का नहीं हूं, पाप का गुलाम हूं, और आत्मा का हनन करने वाला, आत्मगतः तू ते कृतः, वो आत्मा का हनन करने वाला है, आत्मा की हत्या करने वाला है, और आत्मा की हत्या को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ जी देव कृष्ण प्रभु, क्या कहते हैं आत्महत्या को? सुसाइड। ये भी नहीं पता, ये शास्त्र का विषय नहीं है, ये तो अंग्रेजी है। तो आत्महत्या को बोलते हैं सुसाइड। तो वो व्यक्ति सुसाइड कर रहा है जो श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं करता, जो भागवत कक्षा में बैठकर उसके गुणगान में बैठकर प्रसाद का चिंतन करता है कि कब कक्षा समाप्त होगी, प्रसाद मिलेगा, वो क्या है? आत्मगतः तू ते कृतः, आत्महत्या कर रहा है वो। तो अब हम एक सुंदर सी कथा सुनाएंगे और फिर आप लोगों को छोड़ देंगे यहां से, अपने बंधन से। हाँ, तो अभी हम सुना रहे हैं कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम द्वापर युग से कलयुग में आई। तो भगवान कृष्ण ने, ध्यान से सुनिएगा, आखिरी विषय चल रहा है आज की कक्षा का, भगवान श्री कृष्ण ने 3 गुण अवतार लिए आज बताए हैं, कौन कौन से? ब्रह्मा विष्णु, 3 गुण अवतार लिए। तो ब्रह्मा की नाभि कमल से, नाभि से एक ब्रह्मा जी जो प्रकट होते हैं, भगवान विष्णु की नाभि कमल से प्रकट होते हैं, और ऐसे जो ब्रह्मा जी हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या बोलते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, बोलिए गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, हे गोविंद मैं आपका भजन करता हूं, मुझे रास्ता बताइए कि कैसे, मैं तो आप ही का अवतार हूं लेकिन मैं रजोगुणी अवतार हूं, कहीं मैं रजोगुण में फंस गया, कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा, भगवान ने कहा इस संसार में हम फंस
जाए। You are not following actually. I am following every day. Everybody is instructing others, but followers are very bad. Instructors are very good. So becoming an instructor, you have to follow actually. When you are a good follower, you can become a good instructor. Just for the fake of speaking it, it is of no use. If you keep speaking, like I am a fake follower and a fake instructor, if I speak something, it doesn't impact people actually. Though by the mercy of Prabhuji I am here and speaking something, but actually I know it is not going to impact any of you. But when some pure devotee comes and he speaks something, it really impacts. Like Srila Prabhupada, his smile was such a brilliant, relishing smile of Krishna consciousness. The people, those who have never met Srila Prabhupada, become devotees. You know, there was one Mataji who was giving his on the disappearance day of Srila Prabhupada, she was saying that I never met Srila Prabhupada, but I have once seen Srila Prabhupada. And she told the story that she was waiting for Prabhupada's arrival on an airport, and everybody was Prabhupada was among the devotees, or everybody was following Prabhupada. Swamiji ki jai, Swamiji ki jai, Jai Gurudev, Jai Prabhupada, and various other people were chanting like this. And Mataji was very new, never seen Prabhupada, and she was like, where is Prabhupada, Prabhupada? And suddenly, when Prabhupada was about to leave the airport, she shouted, Swamiji! And suddenly Prabhupada turned around and smiled. And when Prabhupada smiled, Mataji says, he is going to be my spiritual master actually. And she surrendered 42 years of her life actually. 42 years. And she said, I never met again Prabhupada. Her initiation happened on letters. Your name is this. And she told, and I came to Vrindavan, learned scriptures, everything, or some other devotees, but I never able to meet Prabhupada. But think like this. There are people, those are called pure devotees, and surrendering to them, what it matters. So you say, okay, we are not able to meet Prabhupada, we are not so fortunate, actually. We are not able to meet Prabhupada, we are not fortunate. We are fortunate. We are in the disciplic succession of Srila Prabhupada. Prabhupada says, who says that Vaishnavas die, he is the biggest fool. Vaishnavas never die. Vaishnavas are always available in the form of books and instructions. So Prabhupada is among you people in the form of the books. But the problem is we don't read books. No, we don't follow actually. So how many of you read every day Prabhupada books? Raise your hands. 1, 2, 3, 4. So we need to. If we read half an hour also, 2 or 3 verses of Srila Prabhupada purports, not only shlokas. Shlokas of Bhagavad Gita are available everywhere actually. Once a devotee was distributing Bhagavad Gita and somebody was asking, you people are charging so much, 100 rupees per Bhagavad Gita? It is very costly. There is 20 rupees Bhagavad Gita available in market. There are various other associations, societies, those who are giving 20 rupees Bhagavad Gita. Then that devotee tell, yes. We are also giving 20 rupees. But you are charging 100 rupees. Like the sloka and the translation available in other Bhagavad Gita, same in this Bhagavad Gita, which is of 20 rupees. But the purports are of 80 rupees. The purports are of 80 rupees, for which Prabhupada has given of everything, life, family life, business, career, even the country, even the spiritual place, Vrindavan. For whom? For us. And he was writing in the nights, translating books. For whom? For us. For what? Keeping it, Bhagavad Gita, as it is, in a drawer. As it is, Prabhuji, it is as it is, lying there, that since we have joined ISKCON. Is it? For what he has given? To read it. Just to read it? Then comes the second verse, the second word in this verse, which it says, Pranipatena Pariprashnena, inquiring. Pariprashnena means inquiring. You have to inquire about what is happening and what is not happening in our lives. How can we improve our Krishna consciousness? Like father, there is son and son is surrendered to the father. Like this child, how old he is?
1.8.
Okay, don't talk much. How old she is?
8.
So, you ask questions to the father? Do you ask questions? Papa se puchte hain? Nahi. Puchte hain? Kiski beti hai ye? Question puchte hain aap se? Kitne puchte hain?
Din mein ek ya do.
Ek ya do. Achhi bachi hai baat. My son asks irrelevant questions, 100 of questions in a day. Why it is this? Why the moon is like this? Why the grass is green? Why there are cars run? Why don't we walk on horses? Why don't we walk chariot? Why drive chariots nowadays? There are so many questions he asks. Because he is in temple most of the time. So he sees, listens. So he keeps asking those questions actually. So when child asks questions and parent reply, like, what is this, Papa? And if parents say, this is cycle, child will inquire again? No, child has a faith on father. What father says, there are people, those who speak the same thing in different names. Like somebody says, what is this every time coming in the morning? It is sun. Somebody will say, it is Surya. Somebody will say, it is Bhaskara. Somebody will say something, water. Same thing. People, different religions make their child understand water in a different names. And they have a tendency to speak about water. Can you bring one glass of tanni to me? Can you get one vallam to me? So there are different language people, religion people. They speak about different things to the same thing. So what their father says, people believe. So if we think of our spiritual pastor as a father and we surrender and we inquire, the second question is inquire. Not surrendering will not do the task. That we are surrendered to the Siksha Guru or the Diksha Guru. You have to ask, inquire. Till the time you will not inquire, nothing going to happen. For example, we take, if you want to go to Vrindavan. How many of you have been to Vrindavan? All. Very nice. So means you have already tasted the nectar, dham. So Vrindavan, if you don't know the way how to go to Vrindavan, some people will guide you. You can go from Sona Road and then take that Mathura Road and then right and you can go. Somebody will tell you, no, you go to Badarpur border and then take a right turn and you can get connect to Mathura Road and then. So till the time you don't know how to go to Vrindavan, what you will do? Ask questions to whom? Anybody who will meet, you will meet. So if you meet me and if you have barrier reaching to the Golok Vrindavan, you will ask, Prabhuji, how can we reach to Golok Vrindavan? How can we reach to Golok Vrindavan? How can we get Krishna consciousness? Isn't it? We keep asking questions. And our speed will be? When we ask questions? Slow. Because we don't know the way. How can we take 100 kilometers per hour speed? We will go in a wrong way, then U-turn, and then so much of hassle will happen. So you will keep asking questions with a 20 speed. Like I was coming, where is this heritage city? Where is this heritage city? The moment I saw heritage city, 80 kilometers. Similarly, when you are not satisfied till that time, when you are not relishing Krishna consciousness, keep asking questions, inquire. Pranipatena pariparashnena. Then how you have to inquire? How you have to inquire? Sevaya. While service, then you have to ask questions. It is not be a challenging questions. Okay, today Kiraj Prabhu is called Prashant Mukund Prabhu. Glorifying him so much. Let's see how much he knows. Last time, Shyam Sundar Krishna Prabhu was speaking something else. Vidar Priya Prabhu was speaking something else. Now let's check it out. How he knows. Prabhuji, it is written in Bhagavatam, 7th canto, 8th verse about Rukmani Devi. Can you tell me the aunt's name of Rukmani Devi? Can you tell? Sorry, I can't tell. Oh, Prabhuji doesn't know. He was not qualified as he was glorified actually. Which is not a surrender actually. It happened with me various times when I go and give seminars to various places. Though and I also take care of midday meal program also. So when I go for midday meal program, so people ask, you are coming from ISKCON. I went to Bangalore, Chennai, Bombay or various other places. People ask, okay, give some classes.
So when I give classes, there are people, those who have irrelevant questions. They just want to show off, puffed of people. They want to ask questions like, what kind of people ask questions? I'll just tell you. That Kansa was there. I was giving a class in AIIMS. I also give classes in AIIMS on every Tuesday, alternatively, Prabhuji, every 15 day. And there is a paramedical staff, around 150 people come and I give classes there. So there were some doctors and they asked questions. If there was Kansa knowing that Devaki's 7th or 8th son is going to kill me, he will be the killer. And Devaki and Vasudev was just married, happily married, just married. And everybody was wishing happy marriage, happy marriage, happy honeymoon, happy marriage. And suddenly Kansa took them and imprisoned them in a prison. So Kansa was so fool that he get Devaki and Vasudev in one prison. If he knows that his or her child can kill me, then why can't Kansa has so much of sense that he keep Vasudev in another jail and become Devaki? That kind of question people ask. So I said, actually, Prabhuji, it is not your problem. You are a Kali Yuga Jeevna. That is your problem. That is not your problem. That is your manufacturing problem, actually. Kali Yuga batch is a failure batch. Kali Yuga people, that is the easiest task, to chant Hare Krishna and go back to Godhead. Otherwise, in Satyuga, Treta Yuga and Dwapar Yuga, it is very tough to get Krishna. It is always says that when 100 years of meditation done in Satyuga, then only you can get Krishna. When you have to do various kind of yagyas and then only you can get Krishna in Treta Yuga. In Paricharyam, when you do deity worshipping, offering gold ornaments to the God, then only you get Krishna in Dwapar Yuga. But in Kali Yuga, it is very easy to chant Hare Krishna and go back to Godhead. Just surrender to the spiritual master. So he asked, I said, Prabhuji, it is your problem. Actually, Kansa, being a demon, can't think of that after marriage and husband and wife can be separated. But now, in the today's world, people, those who call them as sophisticated people, and they are actually not sophisticated, they are sophisticated animals, Dvipad Pashu, they are walking on two legs. Actually, they think that marriage is very easy to be made and to be broken. But at that time, demon kind of a Kansa cannot think of that Devaki and Vasudev can be separated after marriage happens. So what kind of mentality we people are carrying actually? It's a demonic mentality. And also people ask questions to me. When Hanumanji was going to take one ring to Sita Maya, which was given by Ram, and in while going from this side to the another side to Shil.